नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार में जोरदार उछाल देखने को मिला। जीवन बीमा कंपनी का सितंबर में समाप्त तिमाही का शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 15,952 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिससे इसके शेयरों में तेजी आई। BSE पर कंपनी का शेयर 8.70% के लाभ के साथ 682.70 रुपए पर कारोबार कर रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में 9.11% बढ़कर 684.90 रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले जून तिमाही में कंपनी ने 682.9 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। मई में कंपनी का 20,530 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आया था। इसके बाद ये पहला तिमाही नतीजा था। एलॉन मस्क होना आसान नहीं है। ट्विटर के नए मालिक और टेस्ला तथा स्पेसएक्स के अरबपति प्रमुख एलॉन मस्क का युवाओं के लिए यही संदेश है। ये युवा मस्क का अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं। मस्क ने सोमवार को बाली में एक व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा, आप जो चाहते हैं उसके लिए सतर्क रहें। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग वास्तव में मुझे पसंद करेंगे। मैं खुद को प्रताड़ित करता हूँ। स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये अगला स्तर है। मस्क समूह 20 के शिखर सम्मेलन से पहले B20 व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। वो सम्मेलन में वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेना था। शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटे इंडोनेशिया सरकार के एक मंत्री ने कहा कि मस्क को इस सप्ताह के बाद में एक अदालती मामले के लिए तैयारी करनी है, इसलिए वो सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। मस्क ने ट्विटर सौदे का उल्लेख करते हुए कहा, हाल ही के दिनों में मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने कहा, मेरे प्लेट में काफ़ी काम है, ये निश्चित है। उच्चतम न्यायालय आम्रपाली समूह के खिलाफ घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करेगा। इन लोगों ने आम्रपाली की परियोजनाओं में घर बुक किए थे, लेकिन रियलिटी कंपनी इन्हें आवंटन करने में विफल रही। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB परदीवाला की पीठ से घर खरीदारों के वकील ने एक नई पीठ के गठन का आग्रह किया। अभी तक आम्रपाली समूह से जुड़े मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अगुवाई वाली पीठ कर रही थी। न्यायमूर्ति ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं एक नई पीठ का गठन करूंगा। घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ML लाहौटी ने ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई 2019 को समय पर आवंटन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कदम उठाते हुए रियल इस्टेट कानून RERA के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने रियलिटी कंपनियों द्वारा कथित धन शोधन की प्रवर्तन निदेशालय से जांच का भी निर्देश दिया था। इस फैसले से आम्रपाली समूह के करीब 42,000 घर खरीदारों को राहत मिली थी। दुनिया भर के दर्जनों नेता और अन्य गणमान्य लोग इस सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए बाली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे इस द्वीपीय क्षेत्र में पर्यटन का फिर पुनरुद्धार हो सकता है। देवताओं का द्वीप कहे जाने वाले इस क्षेत्र की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन ही है। यहाँ करीब 40 लाख लोग रहते हैं, इनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। महामारी की वजह से इंडोनेशिया के अन्य स्थानों की तुलना में बाली अधिक प्रभावित हुआ था। महामारी से पहले हर साल 62 लाख विदेशी बाली आते थे। मार्च 2020 में इंडोनेशिया में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद इसका पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। रेस्तरां और रिजॉर्ट बंद हो गए और बड़ी संख्या में कर्मचारी गाँव की ओर लौट गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में बाली में विदेशी पर्यटकों का आगमन घटकर केवल 10 लाख रह गया। फिर 2021 में कुछ दर्जन पर्यटन ही यहां पहुंचे। यहां पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे 92,000 लोगों का रोजगार छिन गया। होटलों में कमरों की बुकिंग घटकर 20% से नीचे आ गई। इस द्वीपीय देश के अर्थव्यवस्था में 2020 में 9.3% की गिरावट आई। 2021 में सालाना आधार पर देश की अर्थव्यवस्था 2.5% नीचे आई। बाली प्रांत के क्षेत्रीय सचिव देवा मेड इंद्र ने कहा, कोरोना वायरस के प्रकोप ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बाली 2020 के मध्य में देश के अन्य हिस्सों में इंडोनेशियाई लोगों के लिए फिर से खुल गया। इससे मदद मिली, लेकिन जुलाई 2021 में वायरस के मामलों की वृद्धि से ये क्षेत्र फिर पर्यटकों से खाली हो गया। अगस्त में ये द्वीप घरेलू पर्यटकों के लिए फिर खुल गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू शेयर बाजारों की कमजोर शुरुआत से भी रुपए की धारणा प्रभावित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मजबूती के साथ 80.53 पर खुला, लेकिन बाद में इसने शुरुआती लाभ गंवा दिया। ये 15 पैसे के नुकसान के साथ 80.93 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को रुपया 62 पैसे की बढ़त के साथ 80.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच अन्य 6 मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.49% की बढ़त के साथ 106.80 पर पहुंच गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।